الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آیت نمبر 96 سے لے کر 109 تک، اور یہ ہمارا آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے، اور یہ پورے کا پورا ایک جو ڈسکورس ہے، پورے کا پورا ایک مضمون ہے، اور یہ مضمون آپ کو تلاوت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں چونکہ سورت کے اندر، سورہ ہود کے اندر مسلسل قصص الانبیاء و اقوام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ایک جو ہے تقریباً پہلی جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو چھوڑ کر جو تین رکوعوں پہ مشتمل تھا، باقی تمام تقریباً جو ہے وہ ایک ایک رکوع کے اوپر مشتمل ہے اور پورا ایک مضمون ہے. تو یہ بھی ہمارا چھٹا جو ہے وہ قصہ ہے، ایک لحاظ سے چھٹا، ایک لحاظ سے ساتواں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ پھر ساتواں ہے، اور اگر ان کو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کا ضمیمہ یا اس کا اگر ایک ابتدائیہ جو ہے شمار کر لیں، یہ تعارف شمار کر لیں، تو پھر یہ چھٹا قصہ ہے. تو چھٹی قوم ہے جس اور چھٹے رسول ہیں جن کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر آیا ہے. ہم تلاوت میں جو ہم نے تلاوت سماعت کی ہے اس کے آج جو مضامین ہیں الفاظ کے، اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَلَقَدْ. اب دیکھیں کہ جیسے یہ لقد ہے، یہ دو جو ایمفیسز ہیں، دو تاکیدیں ہیں، وہ جمع ہو گئی ہیں. ایک تو لام کی تاکید ہے، لام، اس کو لام مفتو کہتے ہیں، فتح والی، زبر والی جو ہے لام ہوتی ہے جب آتی ہے پہلے کسی بھی اس سے پہلے، تو یہ بھی پھر جو تاکید کے معنی دیتے ہیں. اور قد بھی جو ہے یہ یقین کے معنوں کے اندر، تاکید کے معنوں کے اندر، ڈیفینیٹ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، والا قد. اور یقینی طور پر، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ارسلنا، بھیجا ہم نے، جو ہے ہم نے بھیجا، ارسلا بھیجا، اور جو ہے نا، نون الف نا جو ہے وہ فرسٹ پرسن پلورل، ہم، اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو ہے اس کی ضمیر ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو ہے وہ خود تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سنگولر ہے، واحد ہے، لیکن یہ ادب کی وجہ سے جو ہے اس کی وجہ سے جو شاہی انداز ہوتا ہے خطاب خاطب کا، اس میں یہ پلورل کا جو ہے وہ سیغہ لایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ پلورل کا ہے. تو ہم نے بھیجا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، جیسے پہلے ہم بھیج چکے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، دونوں ماضی کا ہے. آگے ہے بے آیات نا، بازر بھی کہ بنی سات ہوتا ہے، آیات نشانیاں، نہ ہماری، ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ دینی، وہ سلطان، اور اپنی جو ہے وہ ایک کسی ثبوت اور دلیل، اور کسی جو ہے دلیل کے آپ یقینی طور پر قطعی دلیل، یا آپ قوت بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہو، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بھی ہم دیکھتے ہیں. مبین، بالکل واضح، کھلی، ہم نے کھلی نشانیوں کے ساتھ، ہم نشانیوں کے ساتھ اور کھلی قطعی دلیل کے ساتھ جو ہے بھیج چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. تو جو سلطان لفظ ہوتا ہے اس میں کئی معنی ہیں، غلبے کے معنی کے اندر بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے جو ہے سلطان کو جو ہے وہ کسی غلبے کو اور قدرت کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اس سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کی، آپ نے جو ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، میرے اپنی طرف سے، اپنی جناب سے میرے ساتھ کوئی ایسا غلبہ، قدرت، نشانی، دلیل، معجزہ، یہ سارے معنی اس میں ہیں، کہ میرے لیے، میرے مقرر فرما دے، یعنی میرے دین کو، میرے لیے، میرے جو ہے غلبے کے لیے کوئی قدرت اور کوئی غلبہ اس کو عطا فرما. تو یہ جو ہے قوت کے معنوں کے اندر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت کا کسی رسول کو دیا جانا، یہی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوت آ گئی ہے تو اس کے اوپر آپ، یہ غالب ہی رہے گا، اس کے اوپر کوئی دوسرا جو جو ہیں جو مخالفین ہیں، اب وہ جو جھٹلانے والے اس پہ غلبہ نہیں پا سکتے. تو وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ ہم نے بھیجی آیات اور سلطان، دو چیزیں آئی ہیں، जो है आयात निशानियां मोजज़े और सुल्तान जो है वो जाहिर जो है निशानियां, ये भी जो कुदरत की तरफ से जो दलील है मोजज़े, ये भी शामिल है। तो इससे दोनों से मुराद फिर वही निशानियां और मोजज़े मुराद हैं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए, और ये कुरान मजीद में इनका जिक्र जो है एक जगह इकट्ठा भी आया है, 9 मोजज़े जो है ये थे इनका। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे इसको। इला फिरौना, फिरौन की तरफ, व मला यही और उसके जो है, मला यही और उसके मला जो है, हम इसको पहले भी पढ़ते चल रहे हैं। तमाम रसूलों का जब जिक्र आया, उनकी कौमों का जिक्र आया, तो फिर उसकी कौम के मला सरदार, एलीट अशराफिया सरदार, उनके जिक्र भी आया है, तो वो सब का आया है। तो चूंकि जो है वो एक ही वजह ये है कि जो एलीट क्लास थी, जो अशराफिया थे, रसूलों को उन्होंने लाजमी तौर पर सबसे पहले झुठलाने वालों में वो शामिल होते थे, तो जो है वो इस वजह से उनका जिक्र भी आया है, मुसलसल आ रहा, इसलिए आपको जो है वो इस लफ्ज के मानी में अभी जो है कोई शुभ नहीं होना चाहिए। फत्तबिउ अमर फिरौन, फत्तबिउ पस, फत्तबिउ इत्तबिउ, ये नहीं है, उन्होंने इताअत की, उन्होंने फरमाबरदारी की, पैरवी की, अमर अमर जो है हुक्म, फिरौन फिरौन के हुक्म की, फिरौन के हुक्म की उन्होंने पैरवी की, यानी किसकी बात कर रहे हैं, पूरी कौम की बात कर रहे हैं, उनके जो उनकी जो कौम थी जाहिर है उन्होंने फिरौन की फिर पैरवी की, मूसा अलैहिस्सलाम की, यानी ये बात को नहीं माना। वमा वमा अमरो, और नहीं था अमर जो है वो फिरौन, फिरौन का अमर नहीं था बेरशीद। अब ये इससे पहले भी हम पढ़ते हैं, कोई चीज जो रुश्द को पहुंच चुकी हो, जो ठीक अपनी अच्छी हालत को जो पहुंच चुकी हो, तो वो उस ठीक के मानों के अंदर भी आता है, नहीं था फिर उनका हुक्म ठीक, या इसको रशीद जो है, अभी हमने अलैहिस्सलाम इनकुम रजलो रशीद भी पढ़ चुके हैं, उसमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि तुम्हारे अंदर में कोई भी एक सूझबूझ वाला ठीक सोच वाला आदमी नहीं है, तो जाहिर है इस माने के अंदर भी, तो उसकी सोच जो थी वो ठीक नहीं थी, हटी हुई थी, रशीद हिदायत पाई हुई, हक शनास ठीक, सब माने इसके अंदर जो मुमकिन है। याकदोमो, याकदोमो, देखिए ये जो लफ्ज है याकदोमो जो है ये जैसे कदमा होता है, आगे कदम आगे चलता है, कदम आगे भेजना होता है, कदम आगे आगे की तरफ चलना होता है, तो वो चले आगे चलेगा, कौम हूँ कौम के आगे, तो वो होगा कौम के आगे जो है, किसकी बात, अभी फिरौन की बात है, फिरौन होगा कौम के आगे, जो मिल्की जामा कयामत के रोज वो कौम के आगे आगे होगा। फ औरदा हुमुन्ना, फ औरदा पस, फा जो है पहला तो फा जो है वो पस का है, फिर आगे लफ्ज है औरदा, ठीक है, और इस लफ्ज को चूंकि इसकी थोड़ी सी तकरार आई है इन इसी आयत के अंदर, तो इस लफ्ज को थोड़ा सा जो है वो अच्छी तरह समझ लें, थोड़ा सा गौर कर लें। इसका तर्जमा यह है कि वो पस वो पहुंचाएगा उनको, यानी कौम को, अन्नार नार घाट, यानी आग के ऊपर पहुंचाएगा। अब ये जो लफ्ज है इसको देख लें, इसका वादा, इसका जो मादा है वो तो वाव रा और दाल है, वरद जो होता है वरद, ठीक है। अच्छा, वरदा का मतलब होता है पहुंचना, खास तौर पे जो है वो पानी तक पहुंचना यार, और फिर उसके बाद ओरिजिनल मानी तो ये है कि जानवरों का, जानवरों को, जानवरों का पानी के घाट तक, जहां पे पानी जाहिर है पुराने जमाने के अंदर जहां भी कोई जो चश्मा होता था, कुआं होता था, वो घाट उसको कहते थे, तो वो उसने तक जानवरों को, ये वरदा है, ठीक है, पहुंचना। फिर जाहिर है चूंकि जैसे लैंग्वेज डेवलप हुई है, तो लैंग्वेज ऐसी डेवलप हुई है कि जाहिर है ये बिल्कुल नोमैडिक कल्चर के अंदर, बदवी कल्चर के अंदर डेवलप हुई है, तो जो लोगों के रोजमर्रा के जो जो मामूलात थे उनसे मुतल्लिक जो अल्फाज जो है उन्हीं से डेवलप हुई, और आगे फिर मानी बना, फिर इससे ये मानी भी हुआ किसी जगह पहुंचने के, वरूद जिसे कहते हैं, वारिद होना, फलां बंदा वारिद हो गया, मतलब फलां बंदा फलां जगह पे पहुंच गया, पहुंचा, आन पहुंचा, ठीक है, ये उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, और यही इसी से वरदा से वारद जो निकले वो लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जो है इसके जो फोर्थ फॉर्म है बाबे फाल जो है वो औरदा है, ये बात, ये फिर ये ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव हो गया, वरदा पहुंचना और औरदा पहुंचाना, ठीक है, ये जो है वो, अब जाहिर है वो वरदा के अंदर पानी तक पहुंचना है, और फिर औरदा में होगा पानी तक पहुंचाना या घाट तक पहुंचाना, बुनियादी तौर पर इसका मतलब घाट तक पहुंचाना। तो फिर जो है पहुंचाने के मानों के अंदर भी मुतलकन पहुंचाने के मानों के अंदर भी आ जाता है, जैसे वरदा पहुंचने के मानों के अंदर आ जाता है, इसी तरह औरदा पहुंचाने के मानों या घाट पे पहुंचाना, घाट पे ले आना। तो वो उनको ले आएगा, वो उनको पहुंचाएगा, इन कौन, फिरौन, किसको, कौम को। और फिर उर्दू में से आप देखें कि बहुत सारे लफ्ज निकले हुए, मसलन वरीद है, आपको पता है वरीद जो है ये अरबी में इस्तेमाल होती है, फिर उर्दू में भी यही लफ्ज वरीद है, हम इस्तेमाल कर राग के लिए कहते हैं, इसलिए कि ये जो राग होती है ये खून को पहुंचाने का रास्ता है, इसके जरिए से खून पहुंचता है बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे, जिसको हम वेन जो है इंग्लिश में कैसे कहते हैं। फिर इससे वारिद है, जो शख्स दाखिल हुआ, वारदात है, जाहिर कोई चीज जो हुई है वहां पे। फिर इससे वरूद है, वो भी पहुंचने के मानों के अंदर। विर्द है, वजीफा जो करना, जो वो होता है करना, वो भी इससे निकलो। मूरद जो है, मूरद इल्जाम जिसे कहते हैं, वो भी इसी से जो है, इल्जाम उस तक आके पहुंचा, क्या जाहिर है उस पर इल्जाम लगा, तो वो भी इन ये अल्फाज से निकले हुए हैं। तो अब जो है ये लफ्ज, उम्मीद है ये साफ हो गया, क्योंकि आगे भी इसके हैं। तो फौरदा हूं, वो उनको पहुंचाएगा, नार आग तक पहुंचाएगा। वह बेसलवेदो, अब बेसा ये जो जब भी बेसल लफ्ज कुरान मजीद में आ जाता है, इसको याद रखें कि किसी चीज की मजम्मत करनी मुराद है, किसी चीज की बुराई करना मुराद है, किसी चीज की जो है उसके अंदर जो खराबी है, उस खराबी की वो मतलब एक इंतहा बताना मकसूद है, या बताना कितनी बुरी है ये चीज, जब हम उर्दू में जब कहते हैं ना कितनी बुरी है चीज, उसके लिए बेसा, इसी इसी वजह से इसको कलमा जम कहा जाता है, मजम्मत वाला कलमा। तो बेसल विरदो, कितना बुरा है ये पहुंचे, कितना बुरा है ये पहुंचा, पहुंचे जाने वाला, यानी विरद जो है पहुंचा, जहां पे ये पहुंचा गया है, पहुंचाया गया है, बेसा यानी कलमा जम है, विरद पानी तक पहुंचने की जगह, यानी ये पहुंचने की जगह जहां तक वो फिरौन उनको पहुंचाएगा, कितनी बुरी जगह है। और फिर इससे जो है मुरूद जो है, जिस तक पहुंचा जाए, ठीक है, मुरूद मफूल है, दायरे जिस जगह तक पहुंचा जाए उसको वो घाट कहते हैं। अब यहाँ पे मौजूद बेसल विरदो, कितना बुरा है पहुंचे जाने वाला वो अलमौरूद, जहां पे वो पहुंचाएगा घाट। अब जाहिर देखें कि वहां पे घाट तो आम मुराद पानी है, लेकिन अगर कौम जो है फिरौन उसको घाट तक एक कौम को ले आया है वहां पर, तो वो कौन सी जगह, घाट से क्या मुराद होगा, फिर आग, जहन्नम। तो इसी वजह से तराजम के अंदर यहाँ पे जहन्नम मुराद, कितनी वो बुरी जगह है जहां पे उसको वो पहुंचाया है, जहन्नम जी मुराद है, वहां पे जहन्नम कहा गया है। तो जहन्नम जो है वो मौरूद के मानी जहन्नम नहीं है, मौरूद के मानी तो वो जगह जहां पे कोई पहुंचा, यानी घाट, लेकिन आग का घाट फिर तो वही हुआ, फिर जो है वो जो है जहन्नम ही हुई। तो इस वजह से फिर ये, इस वजह से मैंने थोड़ी सी तफसील बताई है कि आप तराजम जब पढ़ते हैं आप नॉर्मली, तो उसमें ये तफसील नहीं बताई होती, आप सीधे सीधे जहन्नम लिखा हुआ होगा, तो आप कहेंगे कि जहन्नम के लिए एक लफ्ज मौरूद भी है, हालांकि मौरूद जहन्नम के लिए लफ्ज नहीं है, मौरूद घाट के लिए। तो ये उसके फिगुरेटिव मीने में, इस्तलाही मानों में फिर जो उसको आगे इस्तेमाल किया जाता है, या सिचुएशन के मुताबिक उसका तर्जमा जो है या तफसीरी तर्जमा कर लिया जाता है। वह उत बेऊ फी हाज हिल्लाना, वह उत बेऊ, और पीछे लगा, देखें ये जो है आगे, इससे पहले हमने पढ़ा था वह अत बेऊ और पीछे लगा, वह उत बेऊ और पीछे लगाया, तो ये जो है देखें पैसे वायस, एक्टिव वायस, पैसे वायस से, तो ये पैसे वायस हो गए, और पेश से शुरू हो रहा है, कोई भी वर्ब पेश से शुरू होगा तो फिर वो पैसे वायस होगा। उत बेऊ और पीछे लगाई गई, फी हाज ही इसके अंदर, फी हाज ही दुनिया है असल में, ये इस दुनिया के अंदर, लाना लाना इस दुनिया के अंदर, लाना दुनिया को छोड़ दिया गया कि पीछे लगाई गई उनके इस दुनिया में लानत, आप उस कौम की बात की गई, अल्लाह ताला ने साथ फरमाया कि लगाई गई लानत, वयौमल कियामा और कयामत के दिन भी, यानी कयामत के दिन भी ये लगाई गई। बेसर रिफ्दुल मरफूद, बिल्कुल वैसा ही आया है ये, लेकिन लफ्ज और आ गया, बेसर कितनी बुरी जगह है। अब ये रिफ एक लफ्ज है, और उसी का जो है मफूल जो है मरफूद आया है, रिफ्त का वहां पे वर्द का मौरूद आया था, या रिफ्त का मरफूद आया है, इन दोनों जो है ये दोनों मफूल है। तो रफा दा यरफे दो रफदन, बख्श देना, अता करना, अतिया करना, ये मानी होते हैं, ठीक है, रफा दा। और जो है कोई चीज अगर कोई देने वाला हो तो फिर, बल्कि आप अरबी के अंदर जो है ये जो दजला और फरात हैं, दो दर्जा जो है आपको पता है इराक के अंदर है, मेसोपोटामिया में, तो इनको पुराने जमाने ही से राफेदैन कहा जाता है। राफेदैन, दो बख्शिश, दो अता अतिये, दो देने वाले, यानी खुशहाली और पानी और प्रोड्यूस और हर चीज, इसी वजह से उनको राफेदैन फिर कहा जाता है। तो रिफ्त जो है फिर उसका जो जो मस्दर है रिफ्त, उसका मतलब फिर अतिया, इनाम, बख्शिश, मदद हो गया। और उसी से फिर मरफूज जो है वो चीज जो बख्श दी गई, जो बख्शी हुई चीज है, तो कितनी बुरी है बख्शिश दिए जाने वाली चीज। और इससे मुराद जगह भी है, दोनों हो सकते हैं। आप चीज भी इसका तर्जमा कई जगहों पे तराजम में इसका, वो चीज कितनी बुरी है जो बख्श दी गई है इनको, और वो जगह कितनी बुरी है जो इनको बख्शी गई है, या जहां पे ये गए हैं। तो यहाँ पे चूंकि जहन्नम मौरूद मुराद घाट लिया गया है, तो वो जगह है, इसलिए तर्जमा जगह से किया गया है। दोनों तर्जमे से ही है, जगह भी और चीज भी, कितनी बुरी है वो बख्श दिए जाने वाली चीज, उनको क्या बख्शी गई है, जाहिर है वो घाट बख्शा गया, घाट पे पहुंचे। जालिका, ये मिन अम्बा, मिन से अम्बा जो है नबा की जमा है, खबर खबर की, ये अम्बा ये खबरें खबरें हैं, अलकोरा बस्तियों की, कोरा जो है ये करियतुन की जमा है, करिया उर्दू के अंदर भी बस्ती को कहते हैं, बस्तियों की खबरों में से ये एक खबर है जो नबी अकरम सल्लम को बताई जा रही है। ना कुस्सुहू, नून ज़बर, ना हम, कुस्सो कुस्सा जो है कस्सा जो कुस्सो जो है बयान करना, हु उसको, तो हम बयान करते हैं उसको, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अलैका आप पर, आप मिनहा इनमें से, इन बस्तियों की खबरों में से आप हम उसको बयान करते हैं, ये अल्लाह ताला है। कायमुन, कुछ कायम, इनमें से कायमुन, कुछ कुछ के इसलिए तर्जमा है कि कायमुन जो है इसके ऊपर तनवीन है, नकरा है, तो कुछ जो है कायम है वो बस्तियां, वह हसीदुन, और कुछ जो है वो तहस नहस हो चुकी हैं, गल सड़ चुकी हैं, वो बिल्कुल जो है कट चुकी है उनकी फसल। अच्छा, ये हसीद जो है ये हम इसमें पारे में एक जगह पे आया था, शायद दरम्यान में भी कहीं एक दफा आया है, हसद अजासदो हसदन, खेती काटना, और खास तौर पर बेवा की तबाही की गर्ज से कोई खेती अगर काटी गई है, तबाह की गई है, तो वो फिर हसीद है, जिसमें कुरान में इससे पहले आया है, फजा अल्लाहा हसीदन का अल्लम तगनो बेलम्स, तो हमने उनको ऐसा काट डाला कि गोया कल वहां पे कुछ था ही नहीं, तो ये भी अल्लाह ने इशारा फरमाया। तो जो है वो ये जो तीन आयात है इनका तर्जुमा साथ ही पढ़ते, मसाती पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते,
मैं पढ़ता हूँ। और मूसा को हमने अपनी निशानियों और खुली खुली सनत मामूरियत के साथ फिरौन और उसकी आयान सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म रास्ते पर न था। क्यामत के रोज वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और वो अपनी पेशवाई में उन्हें दोजख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए जाए वुरूद है ये जिस पर कोई पहुंचे, और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और कयामत के रोज भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले, ये चंद बस्तियों की सरगश्त है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी है।
जज़ाकअल्लाह खैरन। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जो है वो कौम का और फिरौन का जो मामला था, अब ये आ गया है। अब ये जैसे मैंने कहा था कि ये छठा जो है वो किस्सा है जो आया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी शामिल कर लिया जाए तो ये सातवां किस्सा है इस सूरत का। और लेकिन बाकी किस्से निस्तन तफसील से आए हैं, लेकिन ये किस्सा जो है बस इजमालन और मुख्तसरन आया है। उसकी वजह शायद ये है कि पीछे जो है बिल्कुल जो सूरह यूनस थी मुतसल, उसमें जो है पीछे मूसा अलैहिस्सलाम की और फिरौन का किस्सा जो है काफी तफसील के साथ आया है। जो है इस वजह से यहाँ पे जो अहम जो इसके असबाक हैं सिर्फ उनका जिक्र किया गया है, जो इबरत की बातें हैं, नसीहत की बातें हैं, सिर्फ उनका जिक्र किया गया है। वैसे जो है अदरवाइज इस जो कुरान मजीद के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा जिक्र आया है अम्बिया अलैहिस्सलाम में से, और करीबन जो है 100 से ज्यादा मरतबा जो है मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जो है वो जिक्र आया है, और 30 से ज्यादा सूरतों के अंदर आया। तो अब अंदाजा कर सकते हैं कि, और उसकी वजह भी हम इससे पहले इसके हिकमत भी पढ़ा है, और उसकी वजह गालबन ये थी कि ये जो सबका उम्मत मुसलमा जो है जो 4-5 हज़ार साल से है, तो उसके ऊपर जो गुजरी है बीती है उसकी सारी सरगुजश्त जो है वो हमें भी बताई गई, उम्मत मुसलमान को भी बताई गई है कि देखो इन्होंने क्या क्या अल्लाह ताला के साथ जो है नाफरमानियां की हैं, कैसी कैसी सरकशियां की हैं, अल्लाह ताला के साथ कैसे कैसे वादे करके तोड़े हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कैसे जो है एक निशान इबरत जो है वो बनाया है, और कैसी अल्लाह ताला ने उनको सजा दी है। इस सरगुजश्त के मकसद भी वही है जो इससे पहले जो जो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की जो किस्से बयान किए गए हैं जो उनका मकसद था, इसका भी वही है। और इसमें एक ये बात थी कि मुशरिकीन मक्का को तंबीह करना मुराद था कि तुमने अगर अपना रवैया ना बदला और इसी डगर पे चलते रहे तो फिर तुम्हारे साथ भी वही मामला होगा जो इससे पहले तुम जो है दूसरी कौमों का देख चुके। और साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई कि आप मुखालफीन की दुश्मनी से बिल्कुल ना घबराएं, और ये हर पैगंबर के साथ जो है हमेशा उनकी कौमों ने यही सलूक किया है, और बिल आखिर अल्लाह ताला के जो रसूल और पैगंबर थे वही जो है गालिब रहे, और अल्लाह ताला जो है ईमान वालों को हमेशा उनकी मदद करता है। फिर इस किस्से की एक और खसूसियत भी है, और वो ये है कि दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम ने गुमराह कौमों के खिलाफ उनको पैगाम पहुंचाया और मजमूई तौर पर कौम के खिलाफ जो है उन्होंने खड़े रहे, लेकिन यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक बहुत ही खुदसर हुकूमत और फिरौन जैसे जाबिर और जालिम हुक्मरान जो है वो था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ जो है वो खड़े हुई है और पैगाम जो है वो पहुंचाया। तो ये एक फर्क भी है, तो वो इसमें इस बात को याद रखना देना चाहिए कि उसूली तौर पर किसी भी मुआशरे में जो फसाद का सरचश्मा हो तो सबसे पहले उसको जो है वो उसकी सफाई की जानी चाहिए। यानी पानी के लिए पानी का भी कोई सरचश्मा हो तो अगर पानी के सरचश्मे को अगर जो है साफ नहीं किया जाए तो आगे पानी को जितना ट्रीट कर लिया जाए तो ज़ाहिर पानी खराब ही रहेगा। तो जब तक फासिद हुकूमत जो होगी और वो बरस इकतदार होगी और तो कोई भी मुआशरा जो है वो सआदत और नेकबख्ती का मुंह नहीं देखेगा, इसलिए कि हुकूमत जो है वो सोर्स है फसाद का। तो जाहिर है इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उस मुआशरे के अंदर सबसे पहले उस बड़े फसाद को मरकज, उसके जो मरकज था फसाद का, जो चश्मा था, सर चश्मा था, उसको जो है अपना हदफ बनाया और जो है अपनी दावत का आगाज वहां से किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला ने मूसा को जो अपनी जो आयात और सुल्तान मुबीन जो जिसका भी जिक्र आया है, दो चीजें फिरौन की तरफ देकर भेजा उनकी कौम की तरफ, तो इससे मुराद वो 9 निशानियां हैं, 9 मोजजे हैं जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए थे और जिनका जिक्र आगे फिर सूरह अलसरा में आएगा। हम इसे जो है उनमें से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ को पढ़ चुके हैं, लेकिन इकट्ठे जो इनका जिक्र सूरह इसरा में आएगा। इन आयात और सुल्तान में जो है जाहिर खुदाई कुव्वत मौजूद थी जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए, अल्लाह ताला की तरफ से जो सुल्तान है, जो कुव्वत है, वो अल्लाह ताला ही की कुव्वत है जाहिर है। तो उनकी मुनासबत से ये जो 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 सुल्तान और आयात हैं, ये जो अल्लाह ताला ने मौजदा अता फरमाए, इनकी मुनासबत से ये लगता है, ये जो दो लफ्ज लाए गए यहाँ पे आयात और सुल्तान मुबीन, उनकी मुनासबत शायद यहाँ पे ये है कि फिरौन भी एक अजीम मादी कुवत का मालिक था, एक बहुत बड़ी सल्तनत का, एक अम्पायर का, एक सिविलाइजेशन का मालिक था, और उसको सियासी भी और मजहबी भी दोनों लिहाज से उसको जो है वो गलबा था। कि बिल्कुल ऐसी है जैसे पोप जो क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है, ईसाई की दुनिया है, उसके जो सबसे बड़ा मजहबी सरबराह है पोप है, वो उनकी अम्पायर का भी जो है वो सरबराह हो, तो ये बिल्कुल ऐसे था। तो उसके मुकाबले के अंदर फिर कुव्वत का होना जरूरी था, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके मुकाबले में जो उनको जो निशानियां दी तो उसको उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने कुव्वत रखी और सुल्तान मुबीन जो अता फरमाई तो मजबूती तौर पर तो सुल्तान तो इटसेल्फ खुद उसके अंदर कुव्वत का जो है वो चीज मानी जो है वो मौजूद है। तो ये भी थी कि कुव्वत के मुकाबले में और बहुत बड़ी कुव्वत के मुकाबले में, मादी कुव्वत के मुकाबले में, जबर की कुव्वत के मुकाबले में जो अल्लाह ताला ने उनको निशानियां दी उसके अंदर भी कुव्वत थी। तो शायद ये मुनासबत भी इसमें मौजूद है, एक जो उलमा ने एक नुक्ता यहाँ पे बयान किया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहानी बिल्कुल जो है वो कर दी गई है, मौजूफ कर दी गई है कि अपने हर मुमकिन तौर पर दावत दी और फिरौन और उनके साथियों को न सिर्फ जो है वो नजरी तौर पर, यानी बिल्कुल वो नजरियाती तौर पर बिल्कुल बेदलील कर दिया, बल्कि असा के मोजे की सूरत के अंदर अपनी सदाकत का बिल्कुल ऐसा खुला सबूत दिया जिसको हर कोई अपनी आंखों से जो है वो देख सकता था, यानी एक हिस्सी मोजा था। लेकिन इसके बावजूद भी, ये हिस्सी मोजा देखने के बावजूद भी, कि देखें किस तरीके से जो है वो एक लकड़ी है असा है और किस तरीके से वो जो है वो हर चीज को जो निगल जाती है और फिर वो पकड़ लेते हैं, तो ये सारे अल्लाह ताला की वो कह रहा है वो शख्स कि मेरे रब ने मुझे ये जो है वो अता किया है और ये उसकी कुव्वत से है और ये उसके हुक्म से है, और उसके बावजूद भी फिर वो कौम जो है हजरत मूसा पर ईमान ना लाई। तो इसकी वजह ये थी कि उन लोगों के नजदीक सारी अहमियत जो है इक्तदार और दुनियावी साजो सामान की थी, और वो देखते थे कि ये चीजें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं है, ये सारी चीजें साजो सामान और जो बड़ी बड़ी फौजें और लाओ लश्कर और बड़ी जाओ हशमत और शानो शौकत और महल और महलों के अंदर पहरेदार और ये सारे जो है वो हटो बचो की सदा, ये तो सारे का सारा फिर उनके साथ, तो जाहिर है ये चीजें जो है ना बड़ी इफेक्ट करती थी और वो फिर ईमान नहीं ले। तो इससे कुरान मजीद के इस मकाम से आप देख सकते हैं हमें पता चलता है कि आम लोगों का लीडर चुनने का मैयार क्या होता है, अवाम का, अवाम उन्नास का लीडर चुनने का मैयार क्या होता है, ये कुरान बता रहा है। और ये इस लिहाज से भी चीज सही है कि देखें कि बाकी दुनिया के अंदर भी अवाम जो है कला नाम जो है सारी दुनिया के अंदर एक जैसी होते हैं, तो उनके चुनने का मैयार जो है इससे हमें मालूम होता है कि दौलत, दुनियावी हशमत व कुव्वत, बड़ा ऊंचा आला खानदान, अशराफिया का सा मैयार जिंदगी होना चाहिए, कहीं लीडर का शायद अशराफिया में उसकी कबूलियत होनी चाहिए, हाई क्लास के अंदर, एलीट क्लास के अंदर जो बड़े ऊंचे जो है जो मुक्तदरा है जो एस्टेब्लिशमेंट है जो उसके अंदर उसकी कबूलियत होनी चाहिए, फिर शोहरत होनी चाहिए, बड़ा वो होना चाहिए, मारूफ होना चाहिए। तो ये अवाम के जो जो लीडर मुंतखब करते हैं ये इन बुनियादों के ऊपर करते हैं, और ये आज भी अगर देख लें, यानी इस वाकये को देखें कि 4,000 साल शायद गुजर चुके हैं, तो उससे लेकर अब तक जो आज अवाम की हालत देख ले तो बिल्कुल अवाम के जो है मेयारात एग्जैक्टली आज भी एग्जैक्टली यही है। आज भी उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को मानने को तैयार नहीं थे लीडर के जो है, हालांकि लीडरशिप की सारी क्वालिटीज जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद थी। एक शख्स जो अपने वक्त की सबसे बड़ी अंपायर और बड़े जालिम और जाबे हुक्मरान के सामने उसके दरबार में खड़ा होकर उसको ललकार रहा है, उससे ज्यादा बड़ा लीडर जो है फिर वो कौन हो सकता है जिसको बात करने और जो है बात करने की हिकमत और किस तरीके से जो है वो फिर एक कौम को, एक बहुत बड़ी कौम को वो फिर उसने लीड भी किया है बिल्कुल सून आफ्टर। तो ये सारी जो है, लेकिन जो है वो देखने वाले देखते थे कि इसके पास तो ये बिल्कुल आम सा आदमी है, यहाँ से भाग के गया था, ये इस तरह के फटे पुराने कपड़े हैं, कोई इसके पास दौलत नहीं है, खानदान नहीं है, ये नहीं है। तो देखें ये सारी चीजें जो है वो लोग इस तरह लीड करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो अवाम का मेयार है लीडर चुनने का, तब भी गलत था जो है और आज भी जो है वो इसी तरह है, दुनिया की तरह फिर जो है क़यामत के रोज भी उसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये जिस तरीके से आज दुनिया के अंदर उसने कौम को लीड किया है, आगे आगे रहा है और जैसे जलालत और गुमराही में जो है फिर कौम में लीड करता रहा है, क़यामत के रोज भी इसी तरह वो आगे आगे होगा और उसकी कौम जो है पीछे पीछे होगी, जिस तरह जहां वो बगैर किसी सोच और तदबीर के उसके पीछे चलते थे और अपनी राय और अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया और उसकी गुलामी और जिल्लत पे राजी थे, और हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें अकल दी थी और इरादा और आजादी की नेमतें दी थी, लेकिन उन्होंने खुद आज खुद अपने तई जो है इन आजादी की और इन नेमतों से जो है वो दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी और गुलामी इख्तियार कर ली थी। तो कयामत के रोज भी ये उसके पीछे जो इसी तरह चलेंगे, लेकिन उसके साथ वहां पे कुछ और अवाकिफ भी जो है वो है। फिर जो है ये उनको रहनुमाई करता हुआ आगे चलता हुआ कहां दोजख की तरफ ले जाएगा। इस बात को बयान करने के लिए जो उसलूब बयान किया गया है वो कुछ इस तरह है कि उसकी कौम के लोग जो अंधे बनकर उसके पीछे चलते रहे तो कयामत के रोज भी मवेशियों की रेवड़ की तरह पीछे चलते हुए, और जैसे चरवाहा अपने रेवड़ को पानी पिलाने के लिए घाट पर ले जाता है, फिरौन भी अपनी कौम को आग के घाट पर ले जाएगा। देखिए अब आप जो है वो रिलेट कर सकेंगे वो अल्फाज जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल किए हैं घाट के, कि क्यों घाट के इस्तेमाल, हालांकि अल्लाह ताला इरशाद फरमा सकता था क्यों नहीं कि अल्लाह ताला वो जो है वो जहन्नम में जो है वो ले आएगा, और यकीनी तौर पर इससे मुराद भी वही है जहन्नम ही है। लेकिन देखिए तमसील क्या बयान हुई है, अल्फाज क्या, उसलूब क्या बयान किया, ताबीर क्या अख्तियार की गई है, वो जो है कि वो पानी पिलाते हुए जैसे जानवर पीछे चलते हैं और जानवरों को आगे हांग के जो है वो घाट पे ले आया जाता है, ये भी आगे कौम की इमामत करता हुआ कौम उसके पीछे जैसे रेवड़ चलता है उसके पीछे चलता हुआ वो घाट पे आग के घाट पे ले आएगा। ये बात जो बताइए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कैसी बदतरीन जाए वरूद है ये घाट है जिस पे फिरौन की कौम आ पहुंची और फिरौन उनको ले आया। आप एक और बात भी देख रहे हैं कि अल्लाह ये कुरान मजीद जो है रहती दुनिया तक लोगों के लिए रहनुमाई फराहम करता रहेगा। कुरान मजीद के इस मकाम से हमें क्या पता चलता है, और बहुत अहम जो है ये आयात है दो तीन जो हमने अभी जो है तिलावत इनकी पढ़ी है, जो है जो तिलावत की है और इनके मानी देखे हैं। कुरान के इस मकाम से पता चलता है कि जो लोग दुनिया में किसी कौम या जमात के रहनुमा होते हैं कयामत के रोज भी वो उनके रहनुमा होंगे। अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला की ये आयात खुद बता रही हैं बिल्कुल साफ साफ वाजे, मतलब अगर वो दुनिया में नेकी और सच्चाई और हक की तरह रहनुमाई करते थे तो जिन लोगों ने यहां उनकी पैरवी की है वो कयामत के रोज भी उन्हीं के झंडे तले जमा होंगे और उसकी पेशवाई में जन्नत की तरफ जाएंगे, और अगर दुनिया में किसी जलालत और किसी बदअखलाकी और किसी बेरारावी की तरफ लोगों को बुलाते थे जो दीन हक की राह नहीं है तो यही लोग उनके पीछे कयामत के रोज भी चल रहे होंगे और उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हीं की सरकर्दगी में जहन्नम में जा पहुंचेंगे, जहन्नम का रुख करेंगे। ये वो कुरान का मकाम है जिससे ये बात बिल्कुल दो और दो चार की तरह जो है वाजे होती है, और इसकी तस्दीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से भी होती है जिससे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के रोज जाहिलियत की शायरी का झंडा उमराउल कैस के हाथ में होगा। आपको पता है उमराउल कैस जो है वो जो सबा मुअल्लका है, सात मुअल्लकात हैं जो जो सेवन हैंगिंग्स, उनमें से एक और अरब दुनिया का बहुत मशहूर शायर था। सल्लम ने फरमाया जाहिर ये भी जो है वो जाहिलियत की में फौत हुआ मरा, फरमाया कि ये जाहिलियत की शायरी और शायरों और शायरी का झंडा इसके हाथ में होगा और तमाम अरब जाहिलियत के तमाम शुअरा इसकी पेशवाई में दोजख की राह लेंगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये बात जो कुरान मजीद ने जो है वो ऊपर बयान फरमाई है ये जो इस दुनिया के अंदर भी इमामत और कयादत और फिर उसके पीछे इताअत और कयामत के अंदर भी इसी तरह वही है कयामत क्या, तो हमें कुरान मजीद के इस मकाम से मालूम हो कर लेना चाहिए कि मैं आज किसके झंडे तले हूँ, किसके पीछे मैं चल रहा हूँ, मेरी ये शख्स रहनुमाई करता हुआ मुझे कहाँ ले जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि कयामत के रोज भी जो इस दुनिया में जिनके पीछे चल रहे हैं वो कयामत के रोज भी उन्हीं के पीछे चलेंगे। इससे ज्यादा वाजे क्या जो है अल्लाह ताला बात इरशाद फरमा सकता है। तो ये बहुत ही अहम मकाम है कुरान मजीद का। फिरौन और कौम फिरौन की बदतरीन सजा का जिक्र भी किया गया है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भी उन पर लानत फरमाई और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला ने उन पर लानत मुसल्लत कर दी है, और ये लानत की बदतरीन सजा इसलिए है कि अल्लाह ताला की रहमत से ये दूरी होगी। फरमाया वमा जलम ना हम वमा, और नहीं जलम ना हमने जुलम किया हम उन पर, हमने उन पर जुलम नहीं किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वलाकिन लेकिन बल्कि जलमू उन्होंने जुलम किया अनफुसहुम अपने नफूस पर अपनी जानों पर। फमा और ना अगनत गिना किया काम आया काफी हुआ अनहुम उनके, और ना काम आया उनके अहलियतुहुम अहलियतुहुमुल्लती अहलिया अहलिया जो है ये इलाहुन की जमा है उनके इला माबूद हुम उनके माबूद अल्लती उनके वो माबूद यानी जिनको उनके काम ना आए जिनको यदऊना वो पुकारते हैं मिन दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, मिन शयम कुछ भी, जरा भी कुछ भी काम ना आए फिर उनके जो है वो जो इन्हीं जो है। ये देखें कि जो वमा जुलम ना हो, ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने उन पर जुलम नहीं किया, दरमियान में बात छोड़ दी गई है कि अब अल्लाह ताला ने उनको तकजीब के बदले, ना मानने के बदले अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया बड़े किसी सख्त अजाब के अंदर, उनको हला कर डाला। बाद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि हमने उन पर जुलम नहीं किया था, उनको हला करके उन्होंने खुद जुलम किया था। तो ये बात जो है बताई जा रही है यहाँ पे। और ये बात भी देखें कि वह फिर जब उनको पकड़ लिया तो फिर उनके अहलिया, उनके इलाह जिनको वो पुकारते थे माबूद बना के अल्लाह के राह, वो फिर उनके कुछ भी काम ना आए। ये इसका पस मंजर। लम्मा जा, लम्मा जब जा आ गया अमरो रब्बे का, तेरे रब का अमर, जब तेरे रब का फैसला हुक्म आ गया। अब देखें ये भी छठी मरतबा ये लफ्ज आ गया, लम्मा जा अमरो रब्बे का, यानी कि जब तेरे रब का हुक्म आ गया। हर कौम को लिए जब अजाब आया तो फिर ये अल्लाह ताला साहब में लम्मा जा अमरो रब्बे, जब तेरे रब का हुक्म आ गया, अमर आ गया। और अमर और हुक्म से मुराद यहाँ पे फैसला अजाब है, अजाब इन्हीं है। वमा जादू हम, वमा और नहीं, जादू ज्यादा, यजीदु ज्यादन ज्यादा करना, और नहीं ज्यादा किया हम उनको, और नहीं ज्यादा किया उनको उन खुदा उनके खुदाओं ने, यानी वो जो वो वही जो उसी की बात आहले की बात कर रहे हैं। गैर ततबीब, गैर ततबीब, गैर अदर देन ना के लिए मानो मत है, जैसे मुस्लिम नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम, इसी तरह तदबीब गैर तदबीब, अच्छा हलाकत में डालने के, इंतहाई हलाकत में डालने के, इस बात ने किसी चीज में ऑफर नहीं किया। अब देखिए ये जो लफ्ज है तदबीब, ये एक जो है एक कुरान में जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है आप उसको अच्छी तरह जानते हैं, इसका मादा है ता बा बा तब्बा, तब्बा या तिब्बो, तब्बत जदा दोनों हाथ टूट गए, अबी लहब के दोनों हाथ टूट, ये वही लफ्ज है। तो इसका जो मादा है, इसका जो वर्ब है सीधे सीधे तब्बा या तुब्बो तब्बन, ये अरबी जो है ये आमतौर पर तब्बा बहुत वो कहेगा लफ्ज भी इसमें हमने सुना होगा कि इस्तेमाल करते हैं कि हलाक हुआ, बर्बाद हुआ, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद और तबाह होना, हलाकत में पड़ना, ये हलाकत में डालना, दोनों मानी होते हैं, हलाकत में पड़ना भी, हलाकत में डालना भी। अच्छा फिर इससे जो है, ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बाबे तफील तब्बा, जो तिब्बे वो तबीबन, इंतहाई हलाकत और तबाही में डालना। अच्छा वो है हलाकत और तबाही में डालना, उसी की जो ज्यादा उसके अंदर किसी चीज के अंदर उसकी आप कह लें कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, तो इंतहाई तबाही और हलाकत में डालना, एक है तबाह तबाह हलाकत में डालना, एक इंतहाई हलाकत में डालना, तो उसके लिए फिर ये लफ्ज जो है ततबीब आ गया है सेकंड फॉर्म। और इसीलिए हम बताते भी चले आ रहे हैं कि जो देखें कि जो लफ्ज होते हैं जो जो अदर फॉर्म द वर्ब्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि उसमें मानी तो वही पाए जाते हैं लेकिन उनमें मानी के शेड्स डिफरेंट दिए जाते हैं, जैसे तब्बा बर्बाद करना, और जो है तब्बा बा इंतहाई जबरदस्त तरीके से बर्बाद करना, तो ये मान तो इंतहाई हिलाकत में, इसीलिए तर्जमा किया कि इंतहाई हिलाकत में डालने के सिवा उनके खुदाओं ने उनके माबूदों ने उन्हें किसी चीज में इजाफा नहीं किया। तो कुरान में भी है तब्बत जदा अबी लहबिन व तब, दो मरतबा उसी आयत के अंदर आ गया, तबाह हूं अबू लहब के हाथ दोनों हाथ, व तब और वो खुद भी तबाह, और खुद भी तबाह हुआ, ये उसमें वकदालिका, और इसी तरह अख रब्बे का, अख जो पकड़ना, रब्बे का तेरे रब की पकड़। अब देखें ये लफ्ज जो अखज आया, अखजा अखज जो आया है, ये तीन मरतबा है, इसकी जो है वेरिएशन को देख ले, तेरे रब की पकड़ जो है ये अख अख जो है, खा जो है ये खा वो है, इसके ऊपर जज़्म है, सुकून है, अगर अख्ज होगा तो उसके मनी पकड़ होगी, अगर खा के ऊपर भी जबर होगा तो ये वर्ब होगा पकड़ना, ठीक है। और यहां पे देखे इजा अखजल कुरा, इजा जब अखजा वो वर्ब आ गया, ऊपर जो है वो नाउन आया है, ठीक है। इजा अखजल कुरा, जब अल्लाह ताला ने पकड़ा अलकुरा बस्तियों को, पकड़ता है वो, वही जालिमतुन और वो जुल्म करने वाली होती है, इन अखज अखज़ाहू, इन ये देखे अब जो है इन बेशक अखज़ाहू उसकी पकड़, फिर यहां पे फिर पकड़ आया है। तो ये जो एक ही आयत के अंदर 3 मरतबा अख्ज़ और अखज़ा आया है, इसकी इसके इसके इसके, इसके फर्क को भी जान लेंगे। तो उसकी पकड़ फिर अलीम उन बड़ी दर्द देने वाली है, शदीद उन और बड़ी शदीद भी है। तो उसकी जो पकड़ है बड़ी दर्दनाक है और बड़ी सख्त है। इन फीजा, ये अलीम जो है अलम से है, दर्द दर्द पेन दर्द देने वाला। इन फीजाले का बेशक इसके अंदर लाआयतन एक निशानी, बड़ी निशानी है। लिमन उस हर उस, लिमन उसके लिए, खाफा हर उसके लिए जो खाफा डरा, अजाब अल आखिरा आखिरत के अजाब से जो डरता है। जाले का ये योम मजमून, योमुन अच्छा ये जमा से मजमू, मजमू है जिसे कहते हैं, मजमू कलेक्शन होती है, किसी किस तमाम चीजों को जमा कर दिया जाए तो वो मजमू कहलाता है, जमा होने वाली। ये नहीं, तो ये जमा होने वाला दिन है, ये जमा किए जाने वाला दिन है असल में। जाले का योमुन मजमून, ये जमा किए जाने वाला दिन है, जमा से मफूल है मजमू। लहुन्नास यानी उन लोगों के, यानी अल्लाह के लिए लोगों को, उसके लिए लहुन्नास उसके लिए यानी अल्लाह ताला के लिए ये लोगों लोगों को जमा किए जाने का दिन है। वजाले का और ये योम मशहूद और ये हाजिर किए जाने वाला, वहां पे योम मजबू और नीचे आया योम मशहूद, ये शाहिदा से जो है ये मफूल है, वो जमा से जो है मजमू जो है जमा से मफूल है, और मशहूद जो है ये शाहिदा से मफूल है, दोनों मफूल है, मजमू मशहूद हाजिर किए जाने वाला दिन। इसका तर्जमा साथी पर
हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर सितम ढाया, और जब अल्लाह को हुक्म आ गया तो उनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, उनके कुछ काम ना आ सके, और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा सिवा उन्हें कुछ फायदा न दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है, फिल वाके उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। इन किस्सों में उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत से डरे इबरत है, ये वो दिन होगा जिसमें सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, और यही वो दिन होगा जिसमें सब खुदा के रूबरू हाजिर किए जाएंगे।
जाकल्ला। अब जो है वो यहाँ बात इरशाद फरमाई गई है कि अल्लाह ताला किसी पर भी जो है वो जुल्म नहीं करता, और ये इसलिए बताया गया कि लोगों को ये गलत फहमी ना हो कि इन कौमों को जो तबाह कर दिया गया है इन पे ये जुल्म हुआ है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जुल्म नहीं करता, इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह ताला ने तो उनको आला सलाहियतों के साथ पैदा किया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके अंदर रसूल भेजे और उनको दोनों जो है वो रास्ते दिखा दिए, कामयाबी और कमरानी और अफियत का रास्ता भी और हलाकत और तबाही का रास्ता भी, और ये बता दिया कि अब तुम खुद जो है वो इनमें से इंतखाब करो जिस रास्ते का तुम खुद चलना चाहते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें दोनों इस हक और बातिल को और गलत और सही को पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें इंटेलेक्ट और अल्लाह ताला ने तुम्हें अकल की ताकतें भी अता की हैं। अब खुद तो जिन लोगों ने फिर अल्लाह की फरमाबरदारी की बजाय शैतान की पैरवी की और अपने नफ्स की पैरवी की और रसूलों पर ईमान लाने की बजाय वो तागूत पर ईमान लेके आए और अल्लाह के सामने सर झुकाने और उसी को माबूद समझने और औरों को उसके की बजाय फिर उसको औरों को दूसरों को उसका शरीक बनाया, ख्वाहिशात नफ्स के नतीजे में फिर बद अखलाकियों को अपना शुआर बनाया, तो उन्होंने सब कुछ ये करके गलत रास्ते बेचार के खुद ही अपनी तबाही के जो है वो असबाब फराहम किए। और फिर जब अल्लाह का अजाब आया तो वो सब सहारे, वो सारे बुत आस्तान, वो लीडर, वो शफाते तकसीम करने वाले, वो मुश्किल कुशा, उनके कुछ काम ना आए, इसलिए कि ये सब के सारे झूठे सहारे थे, ये सब सुराब थे और ये सब वहम थे, और वहम दर हकीकत जो है हकीकत के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। झूठे सहारे तो फिर जो है जरूरत के वक्त मुसीबत और महरूमी में इजाफा करते हैं, और यही बात है जहां पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमा ज़ादुहुम गैर तद्बीब, उनके झूठे सहारों ने फिर जो है उनके झूठे खुदाओं ने उनकी तबाही में और उनकी हलाकत में इजाफे के सिवा कुछ नहीं किया। अगर तारीख के आईने में यानी फरमाया गया कि तुम देखो پچھلے انسان واقعات کو، تو آج پھر اس کے حساب سے اپنے عمل کو درست کر لو اور اس رویے سے بچو جس کی وجہ سے سابقہ اقوام جو ہلاک ہوئی ہے. جب تیرا رب کسی بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اخذہ العلیم شدید، اور دوسری جگہ بھی فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ تو بڑی ہی سخت ہے. وہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے، لیکن وہ جلد بازی نہیں کرتا، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے نکل جانے اور بچ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیرگیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. پھر جو ہے وہ گزشتہ اقوام کے انجام کے جو قصص اور عبرت ہے، اور اسے جو ہے اس میں ایک اسے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہے کہ آج کے لوگ جو جس طریقے سے کس طریقے سے اس سے گمراہی کا ایک نتیجہ خز کرتے ہیں. یہ جو تاریخ کے واقعات یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں ان میں سے کئی ایک نشانیاں ہیں ان کے اندر، اگر انسان نشانیوں پہ غور کرے تو پھر جو ہے وہ ضرور اس بات پہ پہنچ جائے گا کہ آخرت ضرور پیش آنے والی ہے، اور پیغمبروں کی باتیں بتائی ہوئی ہیں بالکل سچی تھی، اور ان نشانیوں سے یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ آخرت کا عذاب کتنا سخت ہوگا. یعنی اگر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو یہاں پہ ہلاک کیا ہے بڑی شدید جو ہے وہ بالکل غیر معمولی قسم کی آفتوں کے اندر مبتلا کر کے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قیامت کے روز کس قسم کے عذاب سے ان کو دوچار کرے گا. تو یہ جو علم ہے، یہ تدبر اور غور و فکر اور یہ عبرت جو ہے اس کے دل میں پھر جو ہے وہ خوف پیدا کرے گی، اور وہ بالکل سیدھا رہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملے کو بالکل ٹھیک رکھے گا. یہ قوموں کے عروج و زوال کی جو داستان ہے، یا پھر قوموں کے عروج و زوال کا جو قانون ہے، اس سے وہی لوگ عبرت پکڑتے ہیں جو اللہ کے خوف اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کو اندازہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دہی ہونا. یہ بات جو ہے بتائی گئی، ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ، کہ جو بھی عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں پھر جو ہے ان کے اندر ان کے نشانیاں ہیں. یہ وہ لوگ جو لوگ یعنی نہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ پھر عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، اور جن کے سامنے یہ واقعات سارے کے سارے جو دنیا کے اندر ہوئے ہیں ان کے سامنے بیان بھی کیے جائیں، گزرے بھی ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، تو بالکل سرسری سا پڑھ کے جو ہے پھر وہ انہیں یا تو اتفاقات زمانہ کہہ کے متعلق کر دیتے ہیں کہ یہ تو بس بھی اتفاقات زمانہ ہے، ہوتا رہتا ہے، یا پھر ان کی کوئی مادی توجہ جو ہے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ڈیم ٹوٹا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیم میں سوراخ ہو گیا تھا اور چوہوں نے سوراخ کر دیا تھا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں علاقے میں زلزلہ اتنے لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے، اور یا پھر فلاں علاقے میں جو درجاؤں نے جو طوفانی مچائی اور جو سیلاب آئے تو ان سیلاب کے نتیجوں کے اندر بستیاں ہلاک ہو گئیں اور جو ہے لاکھوں انسان جو ہے ان کا نام و نشان مٹ گیا. یہ تو بس طبعی حوادث ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، یہ تو پیش آتے ہی رہتے ہیں. یہ جو ہے ہر تباہی کے پیچھے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پھر اسباب ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے آپ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تباہی کے پیچھے یہ جو اسباب ہیں ان کو حرکت دینے والا کون ہے؟ وہ حرکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ان اسباب کو حکم کس نے دیا؟ ان ہواؤں کو کس نے چلایا؟ ان بارشوں کو کس نے برسایا؟ اس ڈیم کو کس نے توڑا؟ وہ جو زلزلہ آیا وہ کس نے جو ہے وہ زلزلے کا کس نے جو ہے وہ کون لے کے آیا؟ تو آج کے دانشور جو ہے ان طبعی عوامل کو خود مختار اور جو ہے فیصلہ کن سمجھتے ہیں کہ بس زلزلہ آیا، زلزلے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے. یہ وہ جاہلانہ تصور ہے جس نے بڑی سے بڑی تباہی سے بھی سبق سیکھنے سے ہمیں محروم کر دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے نیچرل ڈیزاسٹر ہوئے ہیں، یہ جو پمپے کا یا یہ جو سیل ارم کا جو آیا سیلاب آیا، یہ جو لوگ ہلاک ہوئے تو بس پھر یہ آتے رہتے ہیں ٹوٹ گئے. تو ہم بھی جو گمراہ قوموں کی دیکھا دیکھی وہ جو ہے ان کے اندر پھر کلچر ڈھونڈتے ہیں کہ جائیں دیکھیں یہ لوگ جو ہے وہ مطلب ہلاک ہوئی ہے اور اس میں ان کا کلچر کیا تھا، رہن سہن کیا تھا، کیسی عمارتیں بناتے تھے، کیسے پلرز بناتے تھے. یہ جو ہے تو عبرت کی کوئی تلاش نہیں ہوتی، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیوں قوم جو ہے کیوں ہلاک ہوئی. یہ جو مونجوڈارو ہے ہمارے پاس، ہڑپا ہے، اس میں ہم نے دیکھو کہ کیا کیا کلچر ہم نے تلاش کر کے لوگوں کو دنیا کو بتایا کہ ان کا یہ کلچر یہ، لیکن کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بھی جو ہے معلوم کر لیں، اس پہ بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ یہ دفن کیسے ہو گئی، یہ قومیں، یہ شہر کے شہر جو ہے یہ دفن کیسے ہو گئے، अब जाहिर कोई लोग जो है अपने शहरों को खुद तो नहीं दफन करता, कोई ऐसा हादसा पेश आया होगा जिसकी वजह से ये शहर जो है ये दफन हो गए, तो क्यों क्या क्यों कर ऐसा हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल हम उसकी तरफ हमारी जो है नजर नहीं जाती, और जो शायर ने कहा है अनवर मसूद ने कि इबरत की एक छटांक बरामद ना हो सकी, कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से। उन्होंने ये इसी इसी के बारे में कहा था, हड़प्पा के बारे में उन्होंने कहा था कि जो है ये उजड़ा सा वो नगर कि हड़प्पा है जिसका नाम, इस करिया शिकस्तो शहरे खराब से इबरत की एक छटांक बरामद ना हो सकी, कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से। तो हमारा मामला भी जो है वो ही वाला है। अब देखें कि हजार हा बरस के जो इंसानी तारीख में ये जो हम एक चीज देखते चले आ रहे हैं कि कौमों का उठना, कौमों का गिरना, कौमों का खत्म होना, ये बिल्कुल रेगुलरली जो है हो रहा है, कौमों का ये होता रूमा हो रहा है। और फिर उसके गिरने और उठने में जिस तरीके से कुछ अखलाकी असूल जो है और अखलाकी असबाब हमें नजर आते हैं, इनसे मालूम होता है कि कायनात पर तभी अवामिल की हुकूमत नहीं है बल्कि एक ऐसी जात की हुकूमत है जिसके नजदीक इंसानी जिंदगी की बका जो है वो अखलाकी जिंदगी के बका के साथ वाबस्ता है। जो कौमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत जिंदगी तक अपनी मसाई को जो है महदूद रखती हैं और उसी में तरक्की करती हैं और अपनी जिंदगी के मकासद को फरामोश कर देती हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनको जो है वो अल्लाह ताला के अजाब के शिकार हो जाती हैं। फिर मैं वमान वाखिरहू और नहीं हम जो है ताखिर करते मौखर करते इल्ला सिवाय इसको मगर, यानी इस चीज को ये जो लोगों का अंजाम है इसको हम जो है या इसको मौखर नहीं करते, ले अजलिन मादूदिन, ले अजल अजल जो है गिनी हुई मुद्दत जो है गिनी एक मुयन मुद्दत और मादूद जो है गिनी चुनी, तो एक गिनी हुई मुद्दत के लिए हम सिर्फ उसको यानी मौखर करते हैं। यौम याति जब वो दिन आएगा, ला तुकल्लिमु ना कलाम करेगा नफ्सुन कोई शख्स इल्ला बेदिन ही उसकी इजाजत के से, यानी जिस दिन कयामत आएगी तो कोई शख्स अल्लाह के हुजूर बात नहीं कर सकेगा जिसको मगर वो इजाजत देगा। फमीन हम उनमें से कोई होगा शकीउन कोई शकी होगा बदबख्त होगा, वह सईद उन और कोई जो है नेकबख्त और सईद होगा। अम्मल्लवीना तो पास जो लोग अम्मल्लवीना शकू तो वो लोग जो बदबख्त हुए, यानी ऊपर जो शकी है ये तो फिर जो है वो देखे कि एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और शकू जो है नीचे हुआ है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो जहां तक जो लोग बदबख्त हुए तो फिर ना तो वो आग में होंगे, लहुम फीहा वो उसमें जो है जफीरुन तो उसमें वो क्या करेंगे वो उसमें चीखे चलाएंगे, जो है इसका यहाँ पे तर्जमा नहीं आ सका यहाँ पे। अच्छा जफीरुन जो है जफीरुन का जो जो लफ्ज है ये गधे के चीखने के लिए ही आता है, इब्तदाई आवाज गधे की जफीर है और आखिरी आवाज जो उसकी शहीक है, तो इससे मुराद होता है फिर आहो पकार करना जोर से चलाना, फिर जो दूसरी आवाज है वो सांस अंदर खींचने के लिए जो सिसकी लेना होता है नालों फरियाद करना, तो मुराद ये होगा कि लोग फिर उसके अंदर जो चीखो चलाएंगे जफीरुन शहीक उसके अंदर चीखो चलाएंगे। खालिदीन फिया वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, मा दामत वो जब तक रहेंगे जब तक ये दामा रहने के लिए आता है दवाम फिर दायम दामा उसी पे होता है समावात वाला, जब तक जमीन व आसमान होंगे वो उन पर तक रहेंगे। जाहिर ये जमीन व आसमान की बात नहीं हो रही, ये तो कयामत की उसके बाद की तो दूसरे जमीन व आसमान की बात है जब तक वो रहेंगे। इल्ला माशा रब्बुक सिवाय इसके जो तुम्हारा रब चाहे, अगर इल्ला इसमें एक्सेप्शन है कि हो सकता है अल्लाह ताला उनको किसी वक्त जो है वो भी निकाल भी सकता है, ये अल्लाह ताला यानी एक्सेप्शन भी अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ही को हासिल है। इन्ना रब्बा का बेशक आपका रब फाल लिमा युरीद, फाल जो है वो बहुत ही कर गुजरने वाला है, यानी ये फाल फाल से फाल है जो है वो हाँ कर गुजरने वाला है, मुबालगे किसी का फाइल से जो है वो जो लिमा युरीद जिसका वो इरादा करता है, और उसका तर्जमा देख रहे चलाएंगे धाड़ेंगे यानी जफीर का इसका तर्जमा पढ़ते साथी।
हम उसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर रहे हैं, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी, इल्ला ये कि खुदा की इजाजत से कुछ अर्ज करे, फिर कुछ लोग उस रोज बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। जो बदबख्त होंगे वो दोजख में जाएंगे, جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے.
جزاک اللہ خیر. اب جو ہے وہ فرمایا کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے، انسان کی یہ اپنی کمزوری ہے کہ وہ اس کو دور سمجھتا ہے، اگر اس کے سامنے قیامت کا ذکر بھی کیا جائے تو وہ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی ابھی دور، ابھی ہنوز دلی دور است، تو جس چیز کا آنا ابھی بہت دور ہے اس کے بارے میں کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں ڈالوں پریشانی میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو تم بہت دور سمجھو، بس ایک گنی چنی مدت ہے جس کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے، اور پھر ایسی مدت بھی نہیں جس میں تاخیر ہو سکے، اس کا مقرر وقت ہے. اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو معاملہ اور بھی زیادہ فکر مندی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے مہلت عمل جو ہے اس کی ختم ہو گئی. تو قیامت کو دور تو وہی کہہ سکتا ہے جو موت کو دور سمجھتا ہے، اور موت کو دور سمجھنا جو ہے وہ سب سے بڑی خود فریبی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ اس روز کا روز اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا. اور پھر اس آیت نے تو تمام بے بنیاد اور خیالی توقعات کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ جو ہے اڑ کے بیٹھ جائیں اڑ کے بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک متوسل جس کو وسیلہ انہوں نے پکڑا ہے اس کو بخشوائے بغیر مانیں گے نہیں، فلاں صاحب جو اللہ میاں کے بڑے چہیتے ہیں جنت کے راستے میں بس بیٹھ جائیں گے اور اپنے جو دامن گرفت جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا دامن وابستہ ہے ان کو جو ہے بخشش کا پروانہ لے کر ہی دیں گے. یہ ناز برادری کرنا تو درکنار، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے تو کوئی زبان نہیں کھول سکے گا سوائے اس کے کہ اس کو کوئی جو ہے اجازت دے. تو یہ ان جو ہے وہ جھوٹی شفاعتوں کے اوپر جو ہے اس دنیا کے اندر تکیہ کرنا اور اپنے عمل اس کی بنیاد پہ چھوڑ دینا بہت بڑا خسارے کا سودا ہے. فرمایا کہ اس دن کچھ لوگ جو ہے بدبخت ہوں گے، اہل دوزخ ہوں گے، اور کچھ نیک بخت اہل جنت ہوں گے، اور یہ بدبختی اور یہ خوشبختی ان کے ایمان اور ان کے عمل کی بنیاد پہ ہوگی. اور دوزخیوں کے چیخنے چلانے کی تعبیر جو بتائی گئی ہے یہ گدھے کی آواز کے حوالے سے جو ہے وہ تعبیر کی گئی ہے کہ اس میں ظاہر ہے ایک حکارت کا پہلو ہے کہ ان کی یہ جو ہے وہاں پہ ان کی حالت ہوگی. وہ اس دوزخ میں اس وقت تک رہیں گے جب تک اس وقت کے جو زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نئی دنیا نے جو نئی بسائی ہے اس دنیا کے اندر جو ہے جب تک وہ آسمان و زمین قائم ہے، یا پھر جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے گا. اور یہ زمین و آسمان تو یقیناً نہیں ہوں گے، کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن مجید کے اندر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زمین و آسمان کو بدل کے رکھ دے گا، یعنی وہ غیر زمین اور غیر سماوات ہوں گے. اور فرمایا یہ جو دامت السماوات والارض کا جو ایکسپریشن ہے یہ ایک محاورہ بھی ہے جو استمرار کنٹینیویشن اور دوام ہمیشگی کے لیے جو آتا ہے، تو اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ، اور اس میں کوئی یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے جب تک وہ زمین و آسمان قائم رہیں گے، اگر کوئی زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر کسی وقت ان کو جو ہے بدلے گا تو شاید اللہ تعالیٰ اس نظام کو بھی اس چیز کو بھی بدل دے. تو اس میں یا پھر اللہ تعالیٰ خود تخفیف کرنا چاہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ڈسکریشن ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا استحقاق ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے. اما الذین سعدوا، اور اس کے مقابلے فرمایا کہ جو لوگ پھر نیک بخت ہوئے بالکل وہ فی الجنت خالدین فیہا، اس کا جو ہے کنورس بیان ہوا ہے وہ جنت میں ہوں گے. ما دام السماوات والارض، وہ بھی اس وقت تک وہاں پہ رہیں گے جب تک تمہارا رب چاہے گا. الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوب، اس کی جو عطا بخشش ہوگی غیر مجذوز نہ ختم ہونے والی ہوگی. مجذوز جو ٹوٹا ہوا کاٹا ہوا توڑا ہوا، اور غیر مجذوز وہ جو نہیں کاٹا گیا جو نہیں توڑا گیا جو کنٹینیو ہے، یعنی اس کی بخشش بھی کنٹینیو ہوگی نہ ختم ہونے والی ہوگی. فلا تکو، یہ فلا تکن ہے، اور تم نہ ہو جاؤ جو ہے فی مریت، کسی شک میں کسی تردد میں، مما اس سے، یعبدو جس کی وہ عبادت کرتے، ہا اولائے یہ لوگ جس کی یہ عبادت کرتے اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یعبدونا، جس کی یعنی یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ سوائے اس کے، کما یعبدو آباؤہم، مگر اس طرح جیسے بندگی کرتے تھے سوائے یعنی اس کے کہ وہ بندگی کرتے تھے ان کے آباؤ آبا و اجداد، من قبل، اس سے پہلے. وَإِنَّا، اور بے شک، हम लमुवफ्फू हम यकीन, ये वफा युवफी तोफियतन, ये पूरा करना सेकंड पार्ट, हम पूरा पूरा जो है देने वाले हैं, पूरा पूरा देंगे, नसीबो हम उनका हिस्सा, गैरो गैर मनकूस बगैर किसी कमी के उनको जो है उसका हिस्सा देंगे। ये वो लोग हैं जिनका यानी उसका जजा उनकी जो है उनकी उनको पूरी पूरी जो है वो मिलकर रहेगी। नकसा आपको पता है, यानी कुछ नुकसान या नकसन जो है तो कमी करना, मनकूस इसे मफूल है यानी काम किया गया, गैर मनकूस वो जो कम नहीं किया गया, उनका जो हिस्सा होगा वो कम नहीं किया होगा, उनका पूरा पूरा दिया जाएगा। रहे वो लोग जो बख्त निकलेंगे तो जन्नत में जाएंगे और हमेशा रहेंगे, और जब तक जमीन आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब चाहे और तेरा रब कुछ और चाहे, ऐसी बख्शिश उनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनकर न था मुनकते न होगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इन माबूदों की तरफ से किसी शक में न रहे जिनकी ये लोग इबादत करते हैं, ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए हैं, उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले उनके बाप दादा किए करते थे। हम इनका हिस्सा उन्हें भरपूर देंगे बगैर इसके कि उसमें से कुछ काट कसर हो। तो ये बात बताई गई है कि जन्नत में जो सआदतमंद लोग होंगे, जो नेक बख्त लोग होंगे अपने ईमान और अमल की बुनियाद पर, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में रखेगा। और अगरचे दुनिया के अंदर उन्हें तकलीफें भी उठाई होंगी, आर्जी नुकसान भी उठाए होंगे, अपने नफ्स को भी मारा होगा, अपनी नींदें भी खराब की होंगी, कुर्बान की होंगी, मुश्किलात भी पड़े होंगे, लेकिन अब उनका अजर जो है वो दायमी है, मिला है उनको, परमानेंट है, हमेशा कायम रहने वाला है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि उसने फरमाया कि अहले जन्नत जन्नत में और अहले दोजख दोजख में दाखिल हो जाएंगे, तो मौत को लाकर जो जिबा कर दिया जाएगा, और फिर पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कि ए जन्नत वालो अब मौत नहीं आएगी, और ए दोजख वालो अब मौत नहीं आएगी। इस ऐलान से जन्नत वालों में खुशी का इजाफा हो जाएगा और दोजख वालों में गम जो है वो बढ़ जाएगा। जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया गया है, लेकिन ये भी बताया गया है कि आप मुखालफीन पर जो है इताब भी किया गया कि आप ये ख्याल ना करें मुशरिकीन अरब क्यों शिर्क से बाज नहीं आते और इन्हें क्यों मोहलत मिल रही है, वो तो इसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे उनके बाप दादा चलते आए थे, और उन्हें उनकी सरकशियों का नतीजा जो है वो पूरा पूरा मिलने वाला है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई किसी शक में मुब्तला थे, बल्कि दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके ये आम लोगों को बात बताई जा रही है, यानी कि कोई माकूल आदमी इस शक में न रहे कि ये दे विल गेट अवे विद इट, यानी ये जिनसे ये अपनी नफे उम्मीदें लगाए हुए हैं, ये जो है परस्तिश और नजरें न्याजें और दुआएं जो है जिसकी भी ये लोगों को पुकारते हैं, ये सब निरी अंधी तकलीद की वजह से ये कर रहे हैं। यही आस्ताने जो है पिछली कौमों के अंदर भी मौजूद थे, उन्होंने भी बड़ी करामतें उनसे लोगों ने मशहूर कर रखी थी कि ये बड़ा साहिब करामत बुजुर्ग है और ये बड़ा साहिब करामत बुजुर्ग है, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह का अजाब आया तो ये तबाह हो गए ये सारे, और आस्ताने धरे के धरे रह गए, और कोई सी नहीं उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने अबाउ अजदाद को पूजते देखा, इन्हीं 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 आस्तानों को, और इन्हीं को ये पूज रहे हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि इनके अबाउ अजदाद का किसी को पूजना और परस्तिश करना उनके लिए क्यामत के दिन कोई उजर न बनेगा कि हमने इसलिए किया कि हमारे आबाओ अजदाद कर देते। वो अपने किए की सजा भुगतेंगे और ये अपने जरायम में पकड़े जाएंगे। हम उनका हिस्सा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उनको पूरा पूरा देंगे, यानी उनके आबाओ अजदाद को भी और इनको भी, और कोई भी इनमें से अपनी गुमराही की सजा से न बच सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये जो रास्ते हैं, ये जो पगडंडियां हैं, कच्ची पगडंडियां, इनसे अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला में हिदायत की बड़ी शाहराह के ऊपर से सिराते मुस्तकीम के ऊपर जो है वो रखे, और हमें आखिरी वक्त तक और आखिरी सांस तक इसके ऊपर जो है अल्लाह ताला हमें रखे, और सारी जिंदगी अपना मुती और फरमानबरदार बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।